वनिष्ठैर्वाणै वनेषु वनगोचरा आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मानिरनुग्रहा न्यहनन्निषितैर्बाणै वनेषु वनगोचरा आसुरी
मृत्युमाश्रितैर्गाणैर्वनेषुवनगोचराहोरात्मानिरनुग्रह वनेषु वनगोचरा आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मानिरनुग्रह न्यहनन्निषितैर्बाणे वनेषु वनगोचरा आसुरी मृत्युमाश्रित्य घोरात्मानिरनुग्रह न्यहनन्निषितैर्बाणे वनेषु वनगोचरा माताजिस् आसुरी मृत्युमाश्रित्य घोरात्मानिरनुग्रह वनेषु वनगोचरा आसुरीं आसुरी वृत्तिं व्यापार आश्रित्य ग्रहण करने से घोर कठोर आत्मा चेतना हृदय निरनुग्रह दयाहीन न्यहनत वत किया निशितै तीखे बाणे बाणों से वनेषु वन में वनगोचरा जंगली पशुओं को। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दयाशून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। तात्पर्य, जब किसी मनुष्य को अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दयावान नहीं रह जाते, फलतः वे अनेक कसाईघर चलाते हैं। इसे सुना या हिंसा कहते हैं। कलयुग में रजो तथा तमोगुण में वृद्धि होने से प्राय सभी लोग आसुरी हैं। अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इस कली काल में दया की वृत्ति प्राय शून्य हो गई है। अतः मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी वध होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए प्रति पांचवें या दसवें वर्ष महायुद्ध होता है, जिसमें असंख्य लोग पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशुवत का ही यह दुष्परिणाम है। अभिमानी आसुरी लोग न तो प्रकृति के नियमों से न ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं, इसीलिए वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशुवध सर्वथा वर्जित है, अतः किसी को तब तक इसके प्रामाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वह चार विधि विधानों का व्रत नहीं ले लेता। ये है पशुवध न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री संसर्ग न करना तथा जुआ न खेलना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कली काल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है।
ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे।
हरे कृष्ण। उपस्थित सभी वैष्णव के आशीर्वाद की कामना करते हुए भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की सेवा और स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हम श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आसुरी मृत्युमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह निहनन निशितेर बाणेर वनेशु वनगोचरा। उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दयाशून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पशु हत्या के कारण समाज में विविध स्तर पर हानि होती है। फिर हम यह चर्चा करेंगे, जैसे तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चार विधि नियमों का पालन करना एक भक्त को शिष्य बनने के लिए कितना आवश्यक है। उपदेशामृत एक आदर्श गुरु की क्या व्याख्या करते हैं, और एक साधक भक्त के लिए अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से योग्य दिशा में लगाना आवश्यक है। और अगर समय रहता है, क्योंकि आने वाले 13 अप्रैल को बाहर, 14 अप्रैल को अपने वैष्णव कैलेंडर से रामनवमी महामहोत्सव है, तो उससे भी इस संबंध में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एक थ्योरी है, अभी कुछ शब्द है जिनको हिंदी में बोलना कठिन है, उनको हम इंग्लिशी शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो एक थ्योरी है, इसे कहा गया है आइंस्टाइन पेन वेव थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो बनाई है भारतीय वैज्ञानिकों ने। ये तीन भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सरनेम से इस थ्योरी को, एक तो नाम आइंस्टाइन का दिया और एक अपना दिया, तो इसे EPW थ्योरी और BIS थ्योरी ऐसा भी कहा जाता है। तो EPW यानी आइंस्टाइन पेन वेव थ्योरी, और BIS यानी बजाज इब्राहिम सिंह। ये तीन भारत के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, तो इसके लिए उसे BIS थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये वैज्ञानिकों का कहना है, सर्वप्रथम तो ये थ्योरी को वो आइंस्टाइन पेन वेव थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे उनका भी कड़ा विरोध था पशु हत्या एवं मांसाहार के प्रति। वो बहुत कड़े विरोधक थे पशु हत्या करने के लिए। वो कहते थे अगर हम पशु हत्या करेंगे तो उसका बहुत भारी कीमत पूरे पृथ्वी और पूरे समाज को चुकाना पड़ेगा। तो उनके सम्मानार्थ उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया। और इन्होंने जो रिसर्च किया है, बहुत सारा विवरण है, हम उसका हम एक संक्षिप्त में उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। तो वो कहते हैं एक कण रहता है या बिंदु रहता है जिसे कहा है नेसिप्टोन पार्टिकल। तो जब भी किसी पशु की हत्या की जाती है तो वो पशु ये नेसिप्टोन पार्टिकल या बिंदु अपने शरीर से उसका स्त्राव होता है, और जब उसका स्त्राव होता है तो उसका घन जो है वो है 7.2 × 10⁻¹⁰। मैंने हिंदी में बताना चाहे तो इतना कम घन है कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर ये बिंदु में ताकत इतनी है कि उसका जब स्त्राव होता है तो वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर पूरी पृथ्वी, खास करके जलाशयों में, समुद्रों में बहुत उसका भारी गंभीर दूषित परिणाम करता है अपनी लहरों से। तो आज की तारीख में हम देखते हैं किसी एक पशु की किसी एक शहर में हत्या नहीं होती है, हजारों लाखों की संख्याओं में पशुओं की हत्या हो रही। तो ये सब कण जब ऐसे एकत्रित हो जाते हैं तो उनके कारण कितने सारे, अभी इसके इंग्लिश शब्द ही मुझे पता है, आप थोड़ी सहायता कर सकते हैं, जैसे साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, हरिकेन्स या भूकंप, ये सब इससे उत्पन्न होते हैं। उसके लिए उन्होंने केस स्टडी के लिए लिया था जो लातूर में किल्लारी में भूकंप हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे वो उदाहरणों की लिस्ट लेंगे तो 5-10 मिनट उसमें चले जाएंगे। पूरे विश्व में उन्होंने ऐसे कितने सारे नैसर्गिक आपत्तियों का विवरण किया है, और ये आर्टिकल आया था, यह है, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये 2018 में एक मैगजीन है, वो मैगजीन का नाम है कंपैशनेट फ्रेंड, उसमें यह आर्टिकल आया। तो इससे वो प्रमाणित करते हैं कि पशु हत्या कितनी समाज के लिए, मानव समाज के लिए कितना धोखादायक है। तो जिस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में देखते हैं, इससे बहुत मिलता जुलता ये वैज्ञानिकों का ये रिसर्च है और जिसके कारण वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पशु हत्या कितनी कम की जाए। अभी हम चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति को ये जो चार नियम हम कहते हैं, पशु हत्या न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री या पुरुष संसर्ग न करना या जुआ न खेलना, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि एक मनुष्य को द्विपाद पशु से मनुष्य की चेतना को लाने के लिए ये चार नियमों का प्रबंधन वैष्णव आचार्यों ने किया है। जब व्यक्ति दया, क्षमा, स्वच्छता और तपस्या, ये धर्म के चार जो स्तंभ हैं, उनका पालन करेगा तब वो द्विपाद पशु से मनुष्य होगा। तो आजकल हम अगर देखते हैं ज्यादातर द्विपाद पशु ही समाज में घूम रहे हैं। उपदेशामृत में या ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद बड़ी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि कहते हैं कि हम जब ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संदेश एक सुंदर पशु का शरीर और सूट कोट टाई बूट पहने हुए एक पॉलिश्ड एनिमल के पास जाते हैं जिसने कपड़े तो मनुष्य के पहने हैं मगर उसकी चेतना पशु की है, तो वो इसे सराहना या उसका गुणगान करना या इसको स्वीकारना उसे बहुत कठिन हो जाता है। वो कहता है कि पापी पेट का सवाल है, हमें तो पेट भरने के लिए, हमारा उदर का निर्वाह करने के लिए समय नहीं, आप ये भक्ति का क्या बता रहे। और ये जो चार कार्य है इसमें से आप कोई भी एक लीजिए, वो कार्य के बारे में जब व्यक्ति सोचता है, वो देखता है, उसमें संलग्न होता है, तो उसमें उसकी चेतना पूरी तरह से आवृष्ट हो जाती है। और वो आवृष्ट चेतना होने के कारण अगर वो चाहे भी, अर्थात अगर कोई भगवान को चाहता है तो भगवान उसके सारे बंधनों को बिना क्षण बिना विलंब शुद्ध कर सकते हैं, मगर जब तक वो इस पाप वृत्ति और पाप कार्यों को छोड़ेगा नहीं तब तक उसको भगवान प्राप्ति करने की या सत्वगुण में आने की प्रेरणा प्रात्यक्षिक जीवन में उसके जीवन में उतरेगी नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएगा। इस प्रकार से भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु की संतुष्टि, यही एक शिष्य के जीवन के आध्यात्मिक जीवन का यश का प्रमाण है। अगर एक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कर सके तो वो अवश्य अपने भक्तिमय जीवन में बहुत प्रगति कर लेगा। और उपदेशामृत में वर्णन आता है कि उत्तम अधिकारी कौन है। उत्तम अधिकारी वो है जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बद्ध जीवों को भगवान के प्रति आकर्षित करते हैं और उनको भगवान को भगवान की शुद्ध प्रेम में भक्ति में लगाते। तो परम पूज्य गिरिराज महाराज ने जो मेनी मून्स ये ग्रंथ लिखा है उसमें वो श्रीपाद श्रील श्रीधर स्वामी महाराज इनका वर्णन करते हैं। जब श्रीधर स्वामी महाराज नए भक्त थे मुंबई में और वो फंड रेजिंग का सेवा कर रहे थे, धनराशि इकट्ठा करते थे मंदिर में, तो प्रभुपाद जी गिरिराज महाराज को बुलाते हैं और बोलते हैं इनको आप क्यों बाहर भेजते हैं धनराशि इकट्ठा करने के लिए, इतना तगड़ा शरीर है कि नहीं, भारत क्या नहीं अमेरिकन है, इतने बुद्धिमान है, इनको बोले मंदिर का जो निर्माण है वो सेवा में सुपरवाइजर बनाइए। तो गिरिराज महाराज उनके पास जाते और बोलते आपको ना आज से मंदिर का कंस्ट्रक्शन करना। वो बोलते मुझे नहीं जमेगा, मैं यही करूंगा, फंड रेजिंग ही करूंगा। तो अभी गिरिराज महाराज बड़े सॉफ्ट है, कोमल हृदय के है, किसी को कुछ दुखाना नहीं चाहते, तो कुछ दिन देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले मैंने बताया ना उनको मंदिर निर्माण में सेवा में लगाइए, आपने बताया नहीं बताया। तो बोले नहीं बताता हूं मैं। फिर से जाते हैं उनके पास, बोले श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है कि आपने मंदिर निर्माण का सेवा देखना चाहिए। तो बोलते मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ये जो भगवान के लिए धनराशि इकट्ठा करके लोगों को भक्ति में लाने में जो आनंद मिलता है वो सीमेंट ईंटों में नहीं आता है। तो कृपया करके मुझे आप यही सेवा के लिए छोड़ दीजिए। तो फिर बाद में वो शिला प्रभुपाद जी को बताते और शिला प्रभुपाद जी बोलते ठीक है कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये शिला प्रभुपाद जी का विशेषता था कि उन्होंने हर भक्त के जो गुण है या कार्य है उसमें जिसमें उसको रुचि आ रहा है वो सेवा में उन्होंने उनको लगाया। प्रभुपाद जी के जो पत्र है उनमें कम से कम 50 पत्र ऐसे हैं जो कोई भक्त इस्कॉन संस्था छोड़ के अगर जा रहा है तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे। तो ऐसे कितने सारे पत्रों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आपको इस्कॉन संस्था के किसी भी मंदिर में समस्या है या इस्कॉन संस्था के किसी भी भक्त से जमता नहीं है आपका, तो आप मेरे पर्सनल सर्वेंट बन जाइए, मैं आपके साथ रह सकता हूं। तो ये शिला प्रभुपाद जी का करुणा था कि उनका वो इच्छा था कि हर भक्त को किसी ना किसी प्रकार से भगवान के भक्ति में सेवा में वो लगाए। और हम देखते हैं यही श्रीधर स्वामी महाराज जब 2014 में उनको वार्ता मिलती है कि उनको शरीर छोड़ना है तो बड़े आनंद के साथ मायापुर में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो पंचतत्व का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसी वर्ष हुआ। और उनकी तीन इच्छाएं थी, उसमें से मुझे दो इच्छाएं याद है, तीसरे किसी को पता है तो बता सकते हैं। उनकी इच्छा थी कि पंचतत्व भगवान को मैं अभिषेक करूंगा स्वयं। आप सोच सकते हैं उनको आ गया है डेथ नोटिस कि बहुत थोड़े ही दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है, मगर उनकी इच्छा है कि हम पंचतत्व भगवान को अभिषेक करेंगे। फिर दूसरी उनकी इच्छा थी कि गौर पूर्णिमा जो उत्सव है वो पूरा उत्सव में वहां पर उपस्थित रहूंगा। तीसरी इच्छा मुझे याद नहीं आ रही। तो ये तीनों के तीनों इच्छा भगवान ने उनके पूरे किए। उस वर्ष हमें भी कुछ सेवा था, हम उधर गए थे तो हम देख रहे थे जब व्हील चेयर पर महाराज जी जाते थे तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। तो एक भक्त, नया भक्त, ऐसा दूर से उनको देख रहा था और उसको बड़ा वो सहमा सहमा लग रहा था कि ये महाराज अभी पता नहीं कितने दिन रहेंगे, उनके सामने मैं जाऊँ तो हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता।